Om Shanti. Good morning. कैसे आप सब आज? बहुत बढ़िया. आज या कल जाने का दिन है, तो भरपूर होके जा रहे हैं. भरपूर हुए हैं, चार्जिंग हो रहा है प्रॉपरली? मन नहीं कर रहा है. हम यहाँ कहते हैं, जाते हैं आने के लिए. फिर से यहाँ आए, बादल भरे, फिर जाकर के बरसना है, फिर वापस यहाँ आएंगे भरने के लिए. यहाँ चार्जिंग हो गई आत्मा की, वहां जाएंगे, फिर वो जो शक्ति, वो लाइट, वो जो ज्ञान, सब कुछ जो आपने अपने अंदर भरा है, वो दूसरों के साथ शेयर करना है कि नहीं करना है, या अपने तक ही सीमित रखना है? शेयर भी तो करना है ना, कि दूसरों के साथ. तो शेयर करेंगे तो डिस्चार्ज तो होने वाला है. फिर से डिस्चार्ज होंगे तो फिर यहाँ आएंगे चार्ज करने के लिए, है ना? तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा. आज के सेशन में हम देखेंगे कि परमात्मा के साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़े, और परमात्मा के साथ कनेक्शन क्यों जोड़ना है, क्यों कनेक्शन जोड़ना है परमात्मा के साथ? एनर्जी लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए, गुणों को लेने के लिए. भगवान के पास, परमात्मा के पास जो भी है वो हम अनुभव करें, प्राप्त करें. तो इसीलिए कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है. तो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अगर परमात्मा हमारे पिता है तो हम उनको याद किए बिना भी क्यों नहीं देते, है ना? कि अगर आपके माँ बच्चे हैं, वो मांगे बिना भी आप कुछ देंगे, राइट? तो आपको जो लगता है कि उनको देना चाहिए या फिर पालना देनी चाहिए, जो भी है, तो परमात्मा ऐसा क्यों नहीं करते? मांगे बिना या कनेक्शन जोड़े बिना, याद किए बिना कनेक्ट क्यों नहीं होता? तो ये एक्चुअली एक साइंस है. अगर कनेक्शन के बिना कुछ भी फ्लो नहीं होता, जैसे दो वायर्स कनेक्ट करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, है ना? हमेशा एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल तक वो फ्लो होता है. फ्लो तभी होगा जब हम कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट किए बिना वो फ्लो नहीं हो सकता. तो इसीलिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. वैसे तो हम सभी योगी हैं. कोई योगी माना, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन जोड़ना, मिलना. वियोग का अर्थ है बिछड़ना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, है ना? योग का अर्थ है मिलन. यहां हम सभी जब से जन्म लिया है तब से योगी है ही है. कोई ना कोई व्यक्ति को याद करते आए हैं, कोई ना कोई वस्तु को निरंतर हम याद करते हैं. कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति को जब हम याद करते हैं तो उनके साथ हमारा योग या कनेक्शन जुड़ जाता है. और ये व्यक्ति और वस्तु के साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है, आत्मा श्रेष्ठ बनती है कि नहीं बनती? आत्मा श्रेष्ठ बन सकती है अगर हम किसी व्यक्ति को याद किया अगर, लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का मूड बहुत खराब है उस दिन, तो आत्मा श्रेष्ठ बन सकती है? वस्तु के साथ, मैं किसी कार को, बंगले को या कोई ऐसे वस्तु को मैं याद कर रही हूं, क्या मैं आत्मा श्रेष्ठ बन सकती हूं? बन सकती हूं? नहीं बन सकती, है ना? इन यादों से, व्यक्ति को, वस्तु को याद करने से केवल कनेक्शन जुड़ता है, एनर्जी फ्लो अगर मैं जिनको याद कर रही हूं व्यक्ति, अगर मेरे से थोड़ा एनर्जी लेवल उनका ज्यादा है, भले उनका उनकी एनर्जी मुझे थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैं कनेक्शन जोड़ रही हूं उसकी एनर्जी बहुत लो है, तो मेरा डिप्लीट होना शुरू होगा। तो यहां हम योग किसके साथ हम कर रहे हैं? परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ कनेक्शन क्यों जोड़ना है? क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ बन सकती है, आत्मा की एनर्जी लेवल ज्यादा होती है जब हम परमात्मा को याद करते हैं। इस याद से हम राजयोगी बनते हैं। राजयोग का अर्थ क्या है? राजयोग माना राजा बनना, है ना? जिस योग के द्वारा हम राजा बनते हैं। तो राजा किस बात की? दूसरों पर राज्य करना है? नहीं। सबसे मुश्किल बात क्या है? सबसे मुश्किल बात है अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, कंट्रोल करना। जो बोलना चाहे वही बोले, जो देखना चाहे वही देखे, जो सुनना चाहे वही सुने, ये सारे जो कर्मेंद्रियां हैं, क्या मेरे कंट्रोल में है? अभी अपने कंट्रोल में है सारे कर्मेंद्रियां? कहीं बार नहीं होता है। जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल लेते हैं, फिर उसके बाद हम पछताते हैं, फिर कहेंगे कि अरे मुझे बोलना नहीं था, मेरा भाव ये नहीं था, बोल लिया ना। अपने ही कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है। ये है स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी है। आत्मा के लेसन में आप सभी ने सुना कौन से सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। जो सोचना चाहे वही सोचे, क्या मेरे विचार मेरे कंट्रोल में हैं? कई बार वो बहाव में चले जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, टेंशन में ऐसे ऐसे विचार हम सोच लेते हैं, उसके कंट्रोल, वो पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन विचार करने वाला कौन है? या विचार ऐसे ही आते हैं? विचार करने वाला कौन है? हम खुद हैं। हम मालिक है, जो हम सोचना चाहे हम वो सोच सकते हैं। कोई ऐसे विचार बाहर से आते नहीं हैं। तो इस राजयोग से हम अपने ही कर्मेंद्रियों पर, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हम पा सकते हैं। इतनी ताकत है इस राजयोग में। और ये कनेक्शन हम के, दूसरी बात ये है, इस एक कनेक्शन जो है किस आधार से हम जोड़े। योग का दूसरा शब्द है याद। बहुत सहज है, क्योंकि योग शब्द सुनते हैं तो बहुत डर लगने लगता है, पता नहीं बहुत बड़ी बात होगी, क्या मैं साधारण हूं? तो साधारण व्यक्ति कर सकते हैं इस योग को, हर व्यक्ति ये कर सकते हैं जब योग शब्द को याद से हम रिप्लेस करते हैं। बस सिंपल है, केवल परमात्मा को याद करना है। राजयोग का मतलब है परमात्मा को प्यार से याद करना। अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को प्यार से याद करना, इसको राजयोग कहते हैं, है ना? याद ही करना है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। याद करना मुश्किल है? नहीं है, है ना? तो अभी ये समझने की कोशिश करते हैं, हमारी याद किस पर टिका है? किन किन को आप याद करते हैं? माता पिता, फ्रेंड्स, जिनका परिचय नहीं है उनको याद कर सकते हैं आप? जिनका परिचय ही नहीं है उनको याद नहीं करेंगे, है ना? स्ट्रेंजर्स को, अजनबियों को हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। सबसे पहली बात है परिचय चाहिए होगा। जिनको हम याद करना है तो उनका परिचय चाहिए, तभी हम उनको याद कर सकते हैं। जिनका परिचय है हम उनको याद करते हैं, है ना? अभी तक जब यहां आए, आने से पहले जो दीदियां हैं उनके बारे में पता नहीं था, उनका इंट्रोडक्शन मिल गया, उनका परिचय हो गया। बाहर जाने के बाद, घर जाने के बाद फिर कहेंगे ना, इस दीदी का हमने सुना, इस दीदी का ये सुना। तो परिचय है तभी तो आप याद करेंगे उनको। और नेक्स्ट है कि जिनके साथ संबंध है उनको आप याद करते हो, जिनके साथ संबंध ही नहीं है उनको आप याद नहीं करेंगे, है ना? चाहे माता पिता है, टीचर है, सद्गुरु है, फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, जो भी है जिनके साथ आपका रोज उठना बैठना है, संबंध है, रक्त संबंध है या फिर ऐसा फ्रेंडशिप का संबंध, सामाजिक संबंध है, उनको आप याद करते हैं। संबंधी तो बहुत सारे हैं, उसमें कजिन्स आपके बहुत सारे होंगे, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, उसमें से कुछ खास कजिन्स होंगे या खास फ्रेंड्स होंगे। क्यों है इतने सारे फ्रेंड्स में से एकाध खास क्यों है? संस्कार मिलन होता है, सेम वेवलेंथ में है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं, स्नेह है, है ना? तीसरा लेवल है वो है स्नेह। जिनके प्रति अपना स्नेह है, प्यार है, उनको हम याद करते हैं। और चौथी बात है जिनसे मुझे प्राप्ति कुछ होने वाला है, मुझे कुछ मिलने वाला है, उनको हम बहुत याद करते हैं। यही प्रिंसिपल्स अगर हम परमात्मा पर लागू करते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि इन चारों में से कोई भी कनेक्शन हमारा परमात्मा के साथ न होने के कारण से परमात्मा को याद करना मुश्किल लगता है, है ना? तो सबसे पहली बात है परिचय, है ना? परिचय मिला परमात्मा का? परिचय मिला ना? क्या परिचय है परमात्मा का? क्योंकि अभी तक परमात्मा को अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति से हम याद करते आए हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए सब धर्म वाले क्या कहते हैं? परमात्मा एक है। वो एक परमात्मा का परिचय क्या है? एक परमात्मा का परिचय क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है, है ना? मैं एक हूं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग रीति से मुझे देखेंगे, तो वो वर्णन अलग अलग रीति से वर्णन करते हैं। कोई पॉजिटिविटी देखेंगे मेरे में, कोई नेगेटिविटी देखेंगे, कोई व्यर्थ देखेंगे, अपने ही मन के आधार से वो वर्णन करते हैं। लेकिन मेरा अस्तित्व तो एक है, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं एक हूं। ऐसे ही परमात्मा भी एक है, उनका एक ही परिचय है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और शिव बाबा है। हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, है ना? परिचय मिल गया तो नेक्स्ट लेवल है उसको, वो कनेक्शन और डीप करने के लिए। क्योंकि केवल जब इंट्रोडक्शन है, केवल जब परिचय है, वो कनेक्शन इतना गहरा नहीं होता, है ना? केवल अगर परिचय है, कनेक्शन इतना गहरा नहीं होता, है ना? तो कनेक्शन, परमात्मा के साथ कनेक्शन गहरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो है संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और संबंध क्या है परमात्मा के साथ हमारा? संबंध क्या है हमारा परमात्मा के साथ? क्या परिचय, क्या है संबंध आपका? फादर है, केवल फादर है? कोई भी गलत बात नहीं होता, बोल दीजिए जो भी है। माता है, और क्या है? परमात्मा कौन है आपके? राह दिखाने वाले, गाइड है, फ्रेंड है, बेस्ट कोलीग है, और कौन सा संबंध है परमात्मा के साथ आपका? गुरु भी है, सद्गुरु। गुरुओं का भी गुरु सद्गुरु है ना। परम टीचर भी है ना, शिक्षाएं भी देते हैं, समझ देते हैं। तो सर्व संबंध परमात्मा के साथ हमारा है ही, माने या न माने, सर्व संबंध परमात्मा के साथ है। आरती करते समय तो यही करते कहते थे ना, मात पिता बंधु सखा स्वामी सब आप हो। कहते तो है, लेकिन निभा रहे हैं वो बात, वो संबंध निभा रहे हैं? अपने आप से पूछने की बात है, निभा रहे हैं परमात्मा के साथ? ये संबंध परमात्मा के साथ क्यों जोड़ना है? क्योंकि संबंध जोड़ने से ही फीलिंग्स जुड़ते हैं, फीलिंग्स जुड़ने से ही वो याद निरंतर हो सकता है। भावना जहां नहीं है, फीलिंग्स जहां नहीं है, आप ये उनको याद करके देखिए, एक सेकेंड भी याद, एक दो सेकेंड आप याद कर सकते, लेकिन ज्यादा समय तक आप उनको याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि भावना नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन परमात्मा को जब हम माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक सद्गुरु इन सर्व संबंधों से जब याद करते हैं, जो हमें प्राप्ति होती है वो उससे भरपूर होने के कारण से वो याद निरंतर या लंबे काल तक उनको हम याद कर सकते हैं। यहां ये समझना जरूरी है, हर संबंध के नाते से मुझे परमात्मा से क्या मिलता है। जब मैं परमात्मा के साथ पिता का संबंध जोड़ती हूं तो क्या प्राप्ति होती है? पिता से, लौकिक पिता से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, समाज में एक प्रकार से रिकग्निशन मिलता है, ये फलाने व्यक्ति का बेटा है या बेटी है, तो रिकग्निशन मिलता है, या प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मिलता है ना, प्यार मिलता है। मोर तो मेजॉरिटी पिता से हमें पावर और प्रॉपर्टी मिलती है ना। तो परमात्मा मुझे अपने, मैं अपना पिता मानूंगी तो क्या मिलेगा? परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, पिता के साथ जब मैं संबंध जोड़ती हूँ, पिता के पास जो भी है वर्षे के रूप में मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। मुझे यहां मांगने की जरूरत नहीं है, हे भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान मुझे मकान दे दो, हे भगवान मुझे नौकरी दिला दो, मुझे पैसा दिला दो, एक गाड़ी दिला दो, एक नहीं तो चार दिला दो। ये सब मांगते आए हैं ना, स्थूल चीज से परमात्मा से मांगते आए हैं। ये स्थूल लौकिक पिता तो नहीं है, अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता है, आत्मा का पिता है। उस पिता के पास क्या है? शक्तियां, गुण, ज्ञान है ना। उनके पास जो भी है वो मेरा हो गया। द मोमेंट, एक क्षण में जो उसको मैंने पिता माना, उसी क्षण में वो सब कुछ मेरा हो गया। केवल मुझे याद करने की जरूरत है मेरा पिता कौन है, वह एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। यहां मांगने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे याद करना है कि मैं कौन हूं। हे भगवान मुझे शांति दो, नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरे पिता शांति का सागर है। केवल इस संकल्प से, केवल इस विचार से मेरा वो जो शांति की शक्ति डाउनलोड हो गया, फिर शांति मांगने की जरूरत है ही नहीं, है ना? क्योंकि मांगने से कितना मिलता है, मांगने से कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। अधिकार पूर्वक जब मैं याद करती हूं सब कुछ मैं जितना ले सकूं मैं ले सकती हूं, वहां कोई ताला चाबी नहीं है, जितना मैं ले सकूं मैं ले सकती हूं, है ना? ये है संबंध का कमाल, है ना? और मां से क्या मिलता है, निस्वार्थ प्यार, है ना? भले पिता कह देंगे तुम ऐसे नालायक हो, तुम निकल जाओ घर से, लेकिन मां कभी नहीं कहेगी। वो हमेशा भले कितने भी गंदे हो ला करके उसको धुलाई करेगी, उसको साफ करेगी, उसको समझाएंगी, उसको प्यार करेंगी, है ना, शिक्षा देंगी, है ना? मेरा मेरी माँ आत्मा की माँ है वो परमात्मा, तो वो निस्वार्थ प्रेम करने वाले। कितना भी मैं पाप करके फिर परमात्मा के पास जाऊं, माफी मांग लूं, वो माफ कर देंगे, वो क्षमा का सागर है। नहीं तो फिर गिल्ट फील होने के कारण से उनके सामने जाने के लिए मैं हमारे पास वो ताकत नहीं रहता। माँ के संबंध से जाएंगे, अपनी गलती मान लेंगे, तो वो फिर वो ताकत देंगे कि वो गलती को फिर सुधारने के लिए आत्मा के अंदर ताकत मिल जाती है, प्यार की शक्ति, है ना? वो परमात्मा मेरा परम टीचर भी है, वो ज्ञान का सागर है, जानी जानन हार है, क्योंकि ज्ञान के बिना गति नहीं है। समझ है तभी तो हम उस राह पर चल सकते हैं। समझ है कि मैं आत्मा हूं, समझ है मेरे पिता कौन है, तो फिर समझ के आधार से मैं वो कनेक्शन जोड़ सकती हूं। समझ है कर्मों की गति के बारे में, समझ है काल चक्र के बारे में, कौन सा समय चल रहा है उसकी समझ है, तो उसके आधार से हम अपने कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान में वो ताकत है, वो ज्ञान का सागर है, जो अभी तक हमारे मन में भ्रांतियां है, इल्यूजन्स है, उस ज्ञान के आधार से सब भ्रांतियां मिट जा रही है। कौन सी भ्रांति थी, मैं शरीर हूं, वो भ्रांति थी, वो मिट गया, ये समझ आ गई मैं आत्मा हूं, है ना? ज्ञान की आवश्यकता है और वो ज्ञान का सागर है, परम टीचर है, और परम सद्गुरु भी है। सदगुरु, गुरु का काम क्या है, गुरु से क्या मिलता है, गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता। वो गुरु तो केवल मार्ग बता सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा ऐसे सदगुरु है जो साथ ले जाने वाले हैं, और परमात्मा ऐसे सदगुरु है जो खुद मुक्त है। खुद मुक्त है तो हमें मुक्ति देने में सहज हो जाएगा। दूसरे जो देहधारी गुरु है वो खुद देह के बंधन में फंसे हुए हैं, वो हमें मुक्ति क्या दिलाएंगे? वो परम सद्गुरु मुक्त है, तो इसीलिए हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता हमें बताने वाले परम सद्गुरु, पवित्रता का सागर, पतित पावन है। परमात्मा का एक ही काम है, वो है आत्माओं को पावन बनाना, परम सद्गुरु का काम। पवित्रता का सागर है, सद्गति देने वाला है ना। तो इसीलिए सद्गुरु के संबंध से आत्मा लिबरेट हो जाएगी, या फिर मतलब हमें रास्ता मिलेगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सद्गुरु के संबंध के आधार से। और खुदा हमारा दोस्त भी है, फ्रेंड भी है। फ्रेंड से क्या मिलता है, क्योंकि मात पिता टीचर सद्गुरु, हम ऐसे संबंध है वो हमारे से श्रेष्ठ है कि हम हमेशा लेने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड ऐसा संबंध है, वहां समानता की जरूरत होता है। फ्रेंडशिप भी हम किसके साथ निभाएंगे, कौन फ्रेंड्स होते हैं हम आपके, जो इक्वल, लगभग इक्वल्स होंगे, भले स्टेटस में नहीं हो तो एटलीस्ट सोच में अगर एक समानता है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो उनके साथ फ्रेंडशिप निभाना इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही वेवलेंथ में, ऑलमोस्ट एक वेवलेंथ में हम चल रहे हैं। यहां समानता क्या है परमात्मा के साथ, भक्ति मार्ग में तो हम बोलते आए हैं ना कि आप श्रेष्ठ हो, ऊंचे से ऊंचे हो, लेकिन हम आपके चरणों के धूल हैं। तो इतना अगर अंतर है तो फ्रेंडशिप हो सकता है, इतना अंतर है तो फ्रेंडशिप हो सकता है फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं समानता की जरूरत है, तभी तो फ्रेंडशिप होगा, तभी तो लेन देन, तो दिल की बात है हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जितना वो मुझे समझते हैं, मैं खुद अपने आप को नहीं समझती हूं, राइट? हर एक की बात ये है। तो इसीलिए उनके साथ जब हम फ्रेंडशिप निभाते हैं, फ्रेंडशिप का संबंध, फ्रेंड का संबंध जोड़ते हैं, तो हम दिल खोल करके उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते, सीक्रेट्स भी शेयर कर। ऐसा वो फ्रेंड है, आपका सीक्रेट कोई बाहर नहीं करेगा, है ना। हम कहेंगे ना कि ये सीक्रेट है, किसी और को नहीं बताना। एक मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड, डीप फ्रेंड होंगे, तो उनको जाकर के बताएंगे कि ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। शायद उसके कोई और फ्रेंड होगा तो वो फिर बोलेंगे ये सीक्रेट है, किसी और को नहीं बोलना। ये टॉप सीक्रेट ओपन सीक्रेट हो जाता है, हर एक को पता है, लेकिन ओपनली किसी को कोई भी ऐसे चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन वो खुदा ऐसे, परमात्मा ऐसा फ्रेंड है जो मेरी बात अपने तक ही सीमित रखते हैं और मुझे मार्गदर्शन देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ समानता क्या है, कुछ एटलीस्ट कुछ बातों में समानता की जरूरत है। किस बात में समानता है परमात्मा का और अपना, किस बात में समानता है? सबसे पहले रूप, परमात्मा ज्योति है और आपका रूप, आप भी तो ज्योति है, आत्मा चमकता हुआ सितारा है, वो परम आत्मा है, मैं आत्मा हूं। रूप वही है, ज्योति ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। एक बात हो गया, दूसरी बात हाँ घर एक है, परम धाम परमात्मा का घर है, सो मेरा भी घर परम धाम है। भले यहां रुके, अब कहीं भी घूमने के लिए विदेश जाते हैं, मान लीजिए लंदन गए हैं, राइट, लंदन में चलते स्ट्रीट्स में चलते चलते कोई भी बहुत दिनों के बाद कोई भारतीय दिख, वैसे तो लंदन में बहुत सारे इंडियंस है, लेकिन बहुत दिनों से आप इंडियन से मिले ही नहीं है, लेकिन दूर जाके जाते कोई इंडियन मिला दिखा, अब क्या करेंगे, बहुत खुशी होगी, अरे बाप रे कोई इंडियन मिला है, चलो बात करते हैं जा करके। तो भले यहां रहते हुए कोई परिचय नहीं है, दूर देश में परदेश में जाकर के अपनापन फील होता है, वो भारतीय है, तो जाकर के बात करेंगे, फिर पता चलेगा अरे अरे ये तो राजस्थान का ही है, मेरे गांव का ही है, तो और नजदीकी। तो भले वह उस गांव में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं किया, वहां जाकर के अपनापन क्यों फील हुआ? किस आधार से अपनापन फील हुआ? स्थान, स्थान के कारण से। परमात्मा और मेरा एक ही घर है, उस आधार से मेरा परमात्मा, मैं और परमात्मा वो समानता आ जाता है। और तीसरी बात, गुण में, गुण में भले अंतर है लेकिन वही गुण है, भले वो सागर है लेकिन मैं गागर हूं, वो अथाह है लेकिन मैं थोड़ा तो हूं, वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूं। ओरिजिनल आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, जो सात गुण हम कहते हैं आत्मा के ओरिजिनल गुण, वो परमात्मा के भी गुण है, है ना? वो सागर है, मैं गागर हूं, है ना? तो तीन बात में जब समानता हो गई तो परमात्मा के साथ मेरा फ्रेंडशिप चल सकता है, चल सकता है। तो वो दोस्त, खुदा को दोस्त बना करके देखिए, बहुत आनंद आपको मिलेगा, शेयर आप कर सकते हैं अंदर की जो भी आपको हीलिंग की जरूरत है परमात्मा के साथ, तो खाली कर दीजिए, परमात्मा के सामने खाली करेंगे वो हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे हर संबंध के साथ परमात्मा को याद करने की जरूरत है। तो सेकंड लेवल हो गया, सबसे पहला लेवल था परिचय, परिचय हो गया, परिचय का नेक्स्ट लेवल संबंध। सर्व संबंधों के आधार से परमात्मा के साथ संबंध उससे थोड़ा गहरा करते जाएंगे। और भी गहरा करना है तो फिर तीसरा लेवल है स्नेह, प्यार। मेरा जो संबंध है परमात्मा के साथ वो स्वार्थ पूर्वक ना हो, स्वार्थ के आधार से टिका हुआ ना हो, प्रेम के आधार से टिका हुआ। अगर स्वार्थ के आधार पर टिका हुआ है तो क्या होगा? क्या होगा? जरूरत पड़ने पर तभी हम भगवान को याद करेंगे, जरूरत नहीं है तो हम भगवान को भूल ही जाते हैं। जब संकट आता है तब परमात्मा को याद करते हैं, है ना? जब मैं पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, उसी गली में लास्ट में गणपति का मंदिर था, छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो पता है वहां भीड़ कब लगती थी? एग्जाम्स के टाइम पे, एग्जाम्स के रिजल्ट्स के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे भी भीड़ होती थी मेरा पेपर अच्छा हो जाए, रिजल्ट के टाइम पे भी ज्यादा होता था कि मैं पास दिला करा दो। और फिर क्या मरते मांगते थे, हे भगवान मेरा, मुझे पास करा दो, मैं अगर फर्स्ट क्लास से पास करा देंगे आप तो 101 नारियल तोड़ूंगा, या फिर इतने पैसा डालूंगा, या फिर ऐसे दिया जलाएंगे, अपने आधार से जो जो है बाल दे देंगे, पता है अलग 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 मन्नते मांगते हैं ना, तो ऐसे मन्नते मांगते हैं। क्या भगवान को आपका 101 नारियल की आवश्यकता है? क्या 1001 दिए की जरूरत है? वो खुद सर्वशक्तिमान है, आपके दिए की जरूरत है? आपका 1,00,000 रुपए की जरूरत है? वो तो दाता है, है ना? यहां हम लालच दिखा रहे हैं, ये संस्कार है ना मनुष्यों का, लालच दिखा रहे हैं, ब्राइब कर रहे हैं भगवान को भी, हम ब्राइब कर रहे हैं, बताओ आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, अगर आप ये नहीं करेंगे मैं फर्स्ट क्लास में पास नहीं होऊंगा, तो 1,00,000 रुपए कैंसिल। वो देंगे तो मैं दू, है ना? ब्राइब, भगवान को ब्राइब कर रहे हैं, तो जरूरत है। जब स्वार्थ होता है इस रीति का संबंध होता है, जब प्रेम पर टिका हुआ है फिर क्या कहेंगे? प्रेम पर टिका हुआ है फिर ये कहते हैं कि आप कांटे दो या फूल दो, मैं आपके घर नहीं छोड़ूंगी, आपको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। वो निस्वार्थ प्यार परमात्मा के प्रति जब होगा, वो तो दाता है ना, वो लेने के लिए तो नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस रीति से हम देते हैं वो मल्टीप्लाई करके मुझे देते हैं, है ना। तो इसीलिए वो शुद्ध प्यार प्रेम की जरूरत है, निस्वार्थ स्नेह से हम परमात्मा को याद करते चले। हाँ, हमारी जो संकल्प है वो पूरी हो जाता है। पूरी किस आधार से होता है? पूरी पूरा हर आत्मा के अंदर क्षमता है, क्षमता है, केवल मैं कनेक्शन जोड़ने के कारण, वो एनर्जी मेरे अंदर आने के कारण से जो मैं सोचती हूं वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम कहते परमात्मा ने कराया, सोचा तो मैंने, लेकिन वो शक्ति मुझे मिली, इस आधार से वो सिद्धि। हर सोच सिद्ध होना शुरू हो जाता है उस शक्ति के आधार से, है ना। तो इसलिए जब ये समझेंगे तो फिर स्वार्थ के आधार से मेरा प्यार मेरा ये नहीं होता। और चौथा जो लेवल है स्नेह, जितना डीप होता जाएगा ना, जैसे सागर के तले में जब जाते हैं एकदम शांत, है ना, एकदम एक स्थिरता आती है। जब प्यार नहीं है तो परमात्मा को याद करना बहुत मुश्किल लगता है। हर एक कहीं ना कहीं स्टेज पर आप प्यार में मग्न हुए होंगे, किसी के प्यार में आप डूबे हुए हैं, तो कोई आए और गए पता ही नहीं चला, आप डूबे हुए, अपने ही विचार में डूबे हुए, अपने ही इसमें डूबे हुए हैं, आए गए तो पता ही नहीं चला, राइट। वो मग्न स्वरूप एकाग्रता ये वो हो जाता है। ऐसे परमात्मा के प्रति भी जब प्यार होता है, प्यार के आधार से हम याद करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मग्न हूं, मग्न अवस्था में, वहां एकाग्रता होगी। और एकाग्रता जहां है, अपने पुराने संस्कार भस्म करना बहुत इजी है। एकाग्रता के बिना पुराने संस्कार भस्म नहीं होते, इसलिए यहां कहा जाता है अगर आपको मुक्ति पाना है दो तरीके हैं, प्यार से या फिर मार से। जो भी हमने कर्म किया है पिछले जन्मों से, जो करते आए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं बुरे भी कर्म भी किए हैं, राइट। बुरे कर्म जो अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा, बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा, लेकिन उसको चुक तो करने के दो तरीके हैं। जो बुरे कर्म किए हुए हैं हो चुका है, उसको कुछ नहीं कर सकते, चुक तो करना ही पड़ेगा। चुक तो करने के दो तरीके हैं, कौन से हैं? एक है मार से और दूसरा है प्यार से। मार माना कोई ना कोई दुख, संबंध से दुख आया, शारीरिक व्याधि हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे परिस्थिति आए, बहुत बहुत परेशान हो रहे, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो, ये बहुत ये हो रहे, इस पनिशमेंट मार से मैं उसको चुकतू कर रही हूं। और दूसरा है प्यार से। प्यार क्या है? प्यार से जब मैं परमात्मा को याद करती हूं, एकाग्रता जब होती है एक उस योग में, वो फिर जैसे कॉन्वेक्स लेंस पेपर रख करके सूर्यों की किरणों को जब एकाग्र करते हैं, फोकल पॉइंट पर जब पेपर को रखते हैं, तो वो दो मिनट में वो पेपर पर आग लगता है, लेकिन उसी पेपर को सूर्य के नीचे हजारों सालों तक भी रखो कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और फोकल पॉइंट पर पेपर रखा, सारे रेस कॉन्सेंट्रेट हुए, दो मिनट में वो बस। हम कितने भी साल परमात्मा को याद करते हैं सुपरफिशियली, जब चाहे स्वार्थ से ये दिला दो वो दिला दो ये कर दो वो कर दो, लेकिन हमारे भस्म पाप भस्म नहीं होते। वो प्यार से एकाग्रता से जब हम बैठते हैं वो फिर वो एक सेकंड में परमात्मा की शक्ति ऐसी शक्ति है जो पूर्व जन्म के जो पाप है वो भस्म हो सकता है। इसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। जैसे करते 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 आप उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जब एक सेकंड में वो भस्म हो सकता है। ये है ताकत परमात्मा की, ये है ताकत परमात्मा के प्रति प्रेम की, स्नेह की, प्यार की शक्ति, है ना। एकाग्रता से, स्नेह में डूबने से, फिर लास्ट स्टेज है प्राप्ति की अनुभूति। बिना मांगे केवल मैं परमात्मा को याद कर रही हूं, फिर बिना मांगे सब कुछ मुझे मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। इंसान से क्या मिलेगा, उनके पास जो है वो मिलेगा, परमात्मा तो बेहद है, उनके पास जो भी है वो मिलता जाएगा। तो चार आधार है याद करने की। सबसे पहला परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, है ना। इस आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं। और अभी याद करने की विधि क्या है, फिर कैसे याद कर सकते हैं। आरती करे, कीर्तन करे, मूर्ति पूजा करे, अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, कैंडल जलाए, जो भी जलाए, क्या करे, कैसे हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करने के लिए कोई भी स्थूल चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्यों स्थूल चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, उनका कोई स्थूल रूप है ही नहीं। वो सूक्ष्म है, मैं आत्मा भी सूक्ष्म हूं, मैं कहीं भी बैठ करके उनको याद कर सकती हूं। आप किचन में भोजन बनाते समय, कोई भी काम करते समय, चलते समय, कभी भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। लेकिन वो कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग करने के लिए पहले आवश्यकता है बैठ करके कुछ मिनट याद करने का अभ्यास। जब आप करते जाएंगे फिर कर्म योग करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए आपको पट पर ही बैठना है या पद्मासन में ही बैठना है, कोई आवश्यकता नहीं। आराम से कुर्सी पर भी बैठे, अगर पट पर भी बैठना, कहीं भी बैठना है आप बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घुटनों में दर्द है, हम कहे कि नहीं पट पर ही बैठना है आपको, आप फोल्ड करके तो बैठ गए, बैठ तो गए लेकिन जबरदस्ती, और फिर क्या होगा, ये यहाँ दर्द हो रहा है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगा, वहीं तो जाएगा, फिर बुद्धि वहां नहीं जा सकता। तो इसीलिए शारीरिक कोई भी तकलीफ, शरीर को कोई भी तकलीफ हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, अलर्ट और रिलैक्स्ड दोनों रखना होगा, क्योंकि जब पूरा रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे वो निद्रा अवस्था में चले जाएंगे, राइट। मेडिटेशन करते समय बैठना है आराम से, लेकिन बैक बोन स्ट्रेट रखेंगे तो फिर अलर्ट भी रहेंगे, तो फिर वो एकाग्रता उसमें हो सकता है। और फिर मेडिटेशन जब करते समय हम यहां कहते हैं आंखों को खोल करके बैठने की आवश्यकता, यहां ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं इसको। आंखों को खोल करके मेडिटेशन करना है। क्यों आंखों को खोल करके मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं ना, बुद्धि बहुत जल्दी यहां वहां भाग जाता है। मन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, अगर आप मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, बहुत जल्दी मन भटक जाता है। इट्स इजी, इस कमरे से बाहर जाना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आंख जब खोल करके रखते हैं तो यहां ही सीमित रहता है मन और बुद्धि। लेकिन उसके लिए कभी कभी तकलीफ, मतलब एकाग्र नहीं हो पाते या फिर फोकस नहीं हो पाते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं हाफ क्लोज्ड, आंख पूरा नहीं खोल के रखना है, हाफ क्लोज्ड, है ना। हाफ क्लोज्ड माना क्या है कि हम ध्यान है लेकिन पूरा अटेंशन नहीं है बाहर क्या, और अटेंशन पूरा अंदर के तरफ है। भले मैं देख रही हूं लेकिन बाहर के प्रति अटेंशन नहीं है, अटेंशन पूरा अंदर है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है आंख खोल करके मेडिटेशन करना मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप बीच बीच में बंद भी कर सकते हैं, लेकिन सजेशन ये रहेगा पूरी पूरा 5 मिनट 10 मिनट आप बंद करके ना रखें, कुछ सेकंड्स के लिए आप बंद रखें फिर खोल दें, नहीं तो फिर वो मेडिटेशन में वो आनंद नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, पहले अटेम्प्ट में होना थोड़ा सा मुश्किल लगता, प्रैक्टिस करते 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 वो अनुभव करना शुरू करते हैं। ये है फिजिकल चीजें जो हम उसका आधार ले रहे हैं, भले मंत्र जाप माला फेरना उन सभी चीजों का आधार नहीं ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम कमेंट्री का आधार ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है क्या सोचना है, इसीलिए कमेंट्री, जो बहन कमेंट्री करा रहे हैं तो उसको हम फॉलो करते हैं तो फिर हमें सहज लगता है, लेकिन केवल बिगिनर्स के लिए ये बात है कमेंट्रीज है। लेकिन बाद में आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ ऐसा हो जाना चाहिए, आपका पर्सनल कनेक्शन परमात्मा के साथ, प्रेयर, रटा हुआ प्रेयर ना हो, रटे हुए कमेंट्रीज ना हो, केवल आपको जो अनुभव करना है आपका कन्वर्सेशन वार्तालाप होना चाहिए परमात्मा के साथ, पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए। केवल बिगिनर्स के लिए ये कमेंट्रीज है, और ये लाल लाइट जो लगाते हैं वो भी बिगिनर्स के लिए, ताकि फिर मन फुल स्टॉप लग जाए और मैं मन को एकाग्र या चैनलाइज कर पाऊं। लेकिन चलते फिरते कहीं भी मेडिटेशन करने जैसा अभ्यास हो जाना चाहिए, ये है बाहर का। अभी सोचना क्या है अंदर मेडिटेशन करते समय, तीन बातों का ध्यान रखेंगे मेडिटेशन करते समय। एक है पॉजिटिव थिंकिंग, स्व चिंतन, जो अभी तक बाहर के बारे में सोच रहे थे, इधर के उधर के, उस व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्ति, उस सभी से समेट करके मन और बुद्धि को अंदर के तरफ ले जाएंगे और स्व चिंतन करना शुरू करेंगे। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, भ्रुकुटि के बीच में विराजमान हूं, आत्मचिंतन, आत्मा के गुण, आत्मा के स्वरूप, आत्मा की शक्तियां, आत्मचिंतन करना शुरू कर। एक है आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन करते करते फिर परमात्मा चिंतन, चिंतन को चेंज करेंगे सबसे पहली बात। दूसरी बात है विजुलाइजेशन, जो भी आप सोच रहे हैं उसको आपको देखना है। कैसे देखेंगे? बुद्धि रूपी नेत्र से। तीसरा नेत्र का गायन है, तीसरा नेत्र आपका कौन सा है? ये तो दो स्थूल नेत्र हो गए, हर एक को तीसरा नेत्र भी है, वो है बुद्धि। यहां क्या है, दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, यहां हर एक को है, केवल शंकर जी को है ऐसे नहीं है, हर एक को वो तीसरा नेत्र है। कहते हैं शास्त्रों में शंकर जी तीसरा नेत्र खोल दिए तो सृष्टि भस्म कर दिया है, वो संसार को भस्म करने की बात नहीं है। आत्म रियलाइजेशन हो गया, आत्म अनुभूति हो गई, तो स्वयं में जो विकार थे वो भस्म हो गए। ये तीसरा नेत्र खोलने का टाइम है अभी। तीसरा नेत्र कौन सा है? बुद्धि रूपी नेत्र, समझ, और वो बुद्धि के अंदर ये ताकत है देखने की। जैसे आप यहां बैठे बैठे अगर आपको देख कहेंगे कि आप एक सेकंड में देखिए अपने आप को एक सागर किनारे, बहुत सुंदर लहरें, ठंडी हवा आ रही है, आप सागर किनारे बैठे हुए हैं, अब देख पा रहे हैं? वो ताकत है बुद्धि के अंदर, वो विजुलाइज करने की, है ना। तो इस मेडिटेशन में वो विजुलाइजेशन करना शुरू करेंगे, जो आप सोचते हैं, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन के साथ साथ खुद को देखने का अभ्यास। तो हम कहेंगे कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच हूं, तो क्या आप बुद्धि की आंखों से, भले ये नेत्र खुले हैं, स्थूल नेत्र खोले हैं, लेकिन मैं अपने आप को यहां भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देख पा रही हूं बुद्धि के नेत्र से, यह पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर मुश्किल लगता है थोड़ा बंद कर लीजिए, कोई भी कोई बात नहीं, आंख बंद करके देखिए, आप देख पा रहे हैं बुद्धि के यहां बीच में चमकता हुआ सितारा, लाइट महसूस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये है बुद्धि की शक्ति, विजुलाइजेशन की ताकत, है ना। तीसरी बात है फील करना। फील करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको कहे ये विजुलाइज करे कि आपके हाथ में एक नींबू है, कटा हुआ नींबू, हाफ हाफ नींबू है आपके हाथ में, आंख बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। आपके हाथ में एक हाफ नींबू है, आप धीरे धीरे से उस हाथ को मुंह की तरफ ले जा रहे हैं और उसको चाट रहे हैं, मतलब सिप कर रहे हैं, उस नींबू को चूस रहे हैं, नींबू को। क्या हुआ? स्वाद आया? स्वाद भले आए या ना लाए, लेकिन सलाइवा तो आ गया मुंह में, पानी तो आ गया, हाँ, खटास भले महसूस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पानी तो आ गया मुंह में, अनुभव हुआ, पानी आ गए। ये है पावर ऑफ विजुलाइजेशन एंड पावर ऑफ फीलिंग, है ना। तो ये तीन बातों को मेडिटेशन में अप्लाई करते हुए मेडिटेशन करेंगे, है ना, स्वचिंतन, विजुलाइजेशन और फीलिंग, अनुभूति। माना जब मैं कहती हूं शांत स्वरूप हूं, वो शांति फील हो जाना चाहिए, कि वो शांति जैसे पूरी तरह बॉडी में, जैसे फील रोम रोम में वो फील हो, है ना। ये तीनों को जब साथ में करते हैं तो फिर बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ समय के लिए वो अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने से पहले कुछ प्रश्न हो मेडिटेशन के कनेक्टेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि सामने ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा का चित्र देखते हैं तो किस पे एकाग्र करे, क्या फॉलो करे, क्या सोचे। तो हम जब देख रहे हैं केवल आंखों को एक जगह पर स्थिर रखना है। आप जो आपको एनर्जी वहां से मिल रही है, नहीं मिल रही है, हाँ नहीं, भावना है, मिल रहा है तो भावना, केवल भावना है वहां, वो स्थूल चीज है, वो केवल लाइट है, वो केवल स्थूल कैनवस है, वहां ज्ञान, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा कहाँ है? परम धाम में। परमात्मा तो परम धाम में, राइट। ये केवल हम देख रहे हैं एक जगह पर आंखों को स्थिर रखने के लिए बस। तो क्योंकि इनसे मुझे, हमें फीलिंग आती है, भावनाएं जुड़ती है बस, लेकिन मुझ आत्मा का कनेक्शन ऊपर होना चाहिए। यहां से आपको शक्ति नहीं मिल रहे, क्योंकि वो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग है, जड़ चीज, जड़ चित्र है, लेकिन केवल फीलिंग मिल रहा है। हाँ, परमात्मा वहां बैठे हुए हैं, ब्रह्म बाबा या शिव बाबा वहां बैठे हुए हैं, ऐसे फीलिंग आती है, लेकिन कनेक्शन हमारा ऊपर जुड़ेगा, क्योंकि आंखों को एक जगह पर स्थिर रखने से मन को एकाग्र करने के लिए मदद मिल जाता है। अगर आंखों को इधर उधर करते रहेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो इसलिए आपको, अगर क्योंकि ये नीचे है और बहुत ये ऊपर है, ऐसा देखना पड़ेगा। अगर अनकंफर्टेबल लगेगा कोई भी एक पॉइंट पर, आंखों के लेवल पर कोई भी एक पॉइंट पर, आप अपने आंखों को स्थिर रख सकते हैं। मन को शून्य नहीं कर सकते। शायद पहले वाले सेशन में था, कवर किया कि नहीं कवर किया, मन का कार्य क्या है। मन का कार्य है विचारों को क्रिएट करना। वो फास्ट जाए उसकी गति को हम कंट्रोल कर सकते, एकदम शून्य हो जाए, एकदम विचारों से विचार क्रिएट ही ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, स्लो या फिर फास्ट, नेगेटिव विचार जितने करते हैं वो फास्ट, नेगेटिव थॉट्स फास्ट है उसकी गति, पॉजिटिव थॉट्स की गति कम है। तो मेडिटेशन में हम पॉजिटिव थॉट्स धीरे 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 कर रहे हैं, ताकि उसमें अंदर ताकत रहेगा, एकदम शून्य नहीं करेंगे, शून्य नहीं हो भी नहीं सकता।
ओम शांति दीदी। मेडिटेशन जब हम एक्सरसाइज करते सुबह, तो मेडिटेशन एक्सरसाइज के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए?
इट्स अप टू यू।
ओके,
कोई कनेक्शन नहीं है। एक्सरसाइज शरीर के लिए है, मेडिटेशन आत्मा के लिए है।
और श्वासों की गति से मेडिटेशन का कोई रिलेशन है?
वो दूसरे, जैसे प्राणायाम है, वो दूसरे बातें हैं, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है।
ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त एक्चुअली जब हम पूरे माइनस की ओर जाते हैं, तब मन में कुछ तो थॉट्स रहते ही है, तब उस वक्त हमें सिर्फ भगवान बाबा के बारे में सोचना है या कुछ विजुअलाइजेशन करना है?
तीनों बात साथ में, नेगेटिव माना डाउन जा रहे, माना नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे आपका प्रश्न क्या है?
मेरा क्वेश्चन था, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते तो पूरे रिलैक्स होने के बाद मन में कुछ तो विजुअलाइजेशन चालू ही रहता है, तो पूरा माइनस करने के लिए कुछ?
माइनस माना कोई और सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो निकलेगा।
तो बट विजुअलाइजेशन पर उस वक्त हम इतना तो वो कर सकते कि मन को कहाँ पे रखना है, उस वक्त किस टॉपिक पे रखना है, कौन सी बात?
वही अभी करेंगे ना, तीनों अभी मेडिटेशन करेंगे तो समझ में आएगा।
ओके, थैंक यू।
जो सोच रहे हैं उससे डिटैच होना बहुत जरूरी है मेडिटेशन करने से पहले।
ओके,
डिटैच होकर के फिर फोकस करेंगे ना, स्वचिंतन, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा।
ओके।
ओम शांति दीदी। दीदी, हम योगा करते वक्त या प्राणायाम करते हुए कर सकते हैं मेडिटेशन?
कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कुकिंग करते समय भी कर सकते हैं, स्नान करते समय भी कर सकते हैं, सब
सभी एक्टिविटीज के साथ कर सकते हैं।
कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म योग हो जाएगा। लेकिन दिन में कुछ ऐसे समय होना चाहिए जो बैठ करके अभ्यास करना बहुत जरूरी है, वो फुल कॉन्सेंट्रेशन होगा। कर्म करते समय जब उपयोग वो बहुत लाइट रहेगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता।
दीदी, मुझे बोलना है कि जैसे हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम का जो बिल्कुल बिगिनिंग की लेवल है, जो कॉन्शियस ब्रीदिंग, क्या हम उसमें कर सकते हैं?
कर सकते हैं।
थैंक यू।
कभी भी कर सकते हैं, सोते सोते लेटते लेटते कर सकते।
ओम शांति। ये मेडिटेशन के टाइम पे हम जब फोकस करते हैं तो पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करना या फिर साकार बाबा पे?
भगवान कौन है?
अच्छा, ज्योतिर्बिंदु।
भगवान तो ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा तो हमारे अलौकिक पिता हैं, जो कर्म करना सिखाया हमें ना, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट है, लेकिन हम कनेक्शन जोड़ रहे परमात्मा के साथ।
अच्छा, मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम?
बेस्ट टाइम है अमृत वेला, सुबह के टाइम पे। अमृत वेला शुरू होता है सुबह 2 बजे से, 2 बजे से 4:45 के अंदर बेस्ट टाइम वो है। अगर नहीं हो पाते जब उठे तब सवेरा। या फिर रात को सोने से पहले भी 5-10 मिनट मेडिटेशन करके फिर सोएंगे।
नमस्ते दीदी, मैं अभी जब भी मैं ध्यान लगाने की या कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, अभी 3 दिन से भी कर रही हूँ और लाइट हेल्प करती है, बट मेरा हर समय एक पॉइंट ऐसा आता है जब मुझे झपकी आती है, नींद आती है, और फिर मैं कुछ ना कुछ पर्स से निकाल के एक टॉफी रखती हूँ कि मैं जागी रहूँ, क्योंकि मैं इससे हटू नहीं, बट मुझे नींद हमेशा आती है। मैं चाहती हूँ ये ना आए, और मैं ये कैसे हो सकता है?
आप लाइफ में टेंस्ड है क्या? जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए नर्व सारे रिलैक्स होने के कारण से नींद आना शुरू हो जाता है, है ना? तो अगर नींद पूरी हो जाती है, तो अगर मेडिटेशन करते करते लाइफ में टेंशन कम होता जाएगा, फिर नींद आना भी कम होगा। और फिर दूसरी बात, इंटरेस्ट, प्यार में डूबे हुए नींद नहीं आएगा, है ना? आनंद, आप एंजॉय कर रहे हैं मेडिटेशन, तभी नींद नहीं आएगा, है ना? कहीं ना कहीं स्टिलनेस आ जाता है तो नींद आती है। मुरली सुनते समय उस नशे से सुनना है कि कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, एक एक बात पर ध्यान रख करके सुनेंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई होता है, टेंशन से आए हुए हैं, एकदम रिलैक्स्ड, फिर नींद है ना, तय होता है।
ओम शांति। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ, जैसे बचपन से ये संस्कार मिले थे कि आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, तो हमारे पाठ चलते हैं, है ना? तो मैं बस थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, जैसे पाठ में भी हमारा पूरा ध्यान होता है, तो क्या हम उसको ध्यान की श्रेणी में रख सकते हैं?
रख सकते हैं, लेकिन फिर वो जो डायरेक्ट कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति है ही, जो पूजा पाठ करेंगे है, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ के जाना चाहते हैं या लिफ्ट से जाना चाहेंगे?
सीढ़ी चढ़, लिफ्ट से नहीं जाना मुझे, धीरे धीरे मुझे वो चीज को अब अनुभव करना है।
लिफ्ट माना पूरा परमधाम जाने की बात नहीं है, मतलब उन्नति, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए आप सीढ़ी चढ़ के जाना चाहते हैं या फिर लिफ्ट से जाना चाहेंगे?
नहीं, अभी भी
आप यहाँ जब हॉल में आए, सीढ़ी चढ़ के आए या लिफ्ट लेके आए?
दोनों चीजें की थी।
कंफ्यूज हो रहे हैं आप। हमें प्राप्ति, हम क्या चाहते हैं लाइफ में? कम मेहनत और ज्यादा प्राप्ति चाहते हैं, राइट? अब अगर ये कहे इस रास्ते पे जाएंगे तो लंबा रास्ता है और डेस्टिनेशन वही है, लेकिन चलना बहुत है आपको, लेकिन हम कहेंगे ये शॉर्टकट है, कम मेहनत है और जल्दी पहुंचेंगे, तो कौन सा लेना पसंद करेंगे?
वही लेना पसंद करेंगे,
शॉर्टकट ही लेना पसंद, जो कम चलना पड़ेगा वो रास्ता लेना पसंद करेंगे, कम मेहनत वाला रास्ता, पहुंचा तो वही है,
हाँ जी,
लेकिन कम मेहनत वाला पसंद करेंगे। हाँ। ये कम मेहनत वाला है, क्योंकि कोई और खर्चा है ही नहीं, कोई और थाम जाम है ही नहीं, केवल समझ है। हाँ। और फिर कनेक्शन जोड़िए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है?
ओम शांति सिस्टर। सिस्टर, हमको लाइट इमेजिन करनी है या हमको कभी लाइट दिखेगी भी ड्यूरिंग मेडिटेशन?
दिखेगी, तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करें। इमेजिनेशन वो है जो रियलिटी नहीं है, जो इमेजिनेशन वो चीजों का करते हैं जो रियलिटी नहीं है। आप आत्मा ज्योति है वो रियलिटी है, वास्तविकता है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है वो भी रियलिटी है, वास्तविकता है। तो जब आप तीसरे आंख से देखने की कोशिश करेंगे वो रियलिटी अनुभव होगा। देखने की बात नहीं है, अनुभव करने की। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। सीधा बैठ जाए। दोनों पैर जमीन पर। जो भी चीज, पर्स, बुक, सब साइड में, पूरा फ्री होके बैठे। रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम अलर्ट, बैक बोन स्ट्रेट, कोई भी एक पॉइंट पर अपने आंखों को स्थिर रखें। जो मैं बोलती जाऊंगी सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे। आसपास के वातावरण से, लोगों से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करें, डिटैच करें। और अंतर जगत की यात्रा के ओर चले। मन की स्क्रीन पर अपने विचारों को देखने की कोशिश करें। बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे खुद को देखने का अभ्यास करें। भ्रुकुटि के मध्य में एक चमकता हुआ अजब सितारा, चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, ये शरीर जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूं, इस शरीर को धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना कर्म कर रही हूं। ये शरीर केवल मेरा माध्यम है, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, राजा हूं, कंट्रोलर हूं, त्रिकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहर की जगत के साथ कनेक्टेड हूं। देखने वाली मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कानून द्वारा सुन रही हूं, सुनने वाली मैं आत्मा हूं, त्रिकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूं, बोलने वाली मैं आत्मा हूं, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा अलग अलग कर्म कर रही हूं, मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा एक एक रोम कण शरीर का शांत शीतल होता जा रहा है, धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को ऊपर के तरफ ले जाती हूं, जहां मेरा निजी घर परम धाम मुक्ति धाम शांति धाम है। स्वयं प्रकाशित सुनहरे लाल प्रकाशित दुनिया, मेरा घर सो मेरे पिता परमात्मा का घर, वहां मैं आत्मा उस परम ज्योति के सानिध्य में आ रही हूं, सर्वशक्तिमान शांति का सागर, सुख का सागर, पतित पावन परमेश्वर, रूप में ज्योति गुणों में सागर, मुझ आत्मा के परम पिता है, परमात्मा के पास जो भी है वो मेरा भी है। वर्षे के रूप में मुझ आत्मा को सब कुछ प्राप्त है। परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए उनके जैसे बनती जा रही, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख अपना सब चिंता, भय, बोझ सब कुछ परमात्मा के हवाले करें और मैं निश्चिंत लाइट होती जा रही, हल्की होती जा रही। परमात्मा ऐसे दोस्त है मेरा, जो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़े, निरंतर हम कनेक्टेड हैं। शिव और शक्ति कंबाइंड है, अपने अंदर शिव की शक्तियों को भरती जा रही हूं। सशक्त होती जा रही, भरपूर होती जा रही हूं। अपने अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियों को भरते हुए पुनः इस शरीर में अपने स्थान पर आती हूं, लेकिन मैं निरंतर परमात्मा के साथ
जुड़ी हुई हूं। शिव बाबा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। बाबा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं, ताकि हर आत्मा उस पिता परमात्मा को पहचान कर उनके साथ कनेक्शन जोड़े और पुनः अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त।